ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को परसों और उससे पहले भी अपनी निर्विघ्न स्थिति बनाने का विशेष इशारा दिया। यथार्थ याद की विधि द्वारा अपनी निर्विघ्न स्थिति कैसे बना सकते हैं, इस विषय पर हम सबको और अधिक स्पष्टीकरण देने, क्लास कराने के लिए डॉक्टर सतीश गुप्ता जी आए हैं। हम आपका बहुत बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है डॉक्टर सतीश गुप्ता भाई जी, ग्लोबल हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिसिन हैं तथा वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल ट्रोमा सेंटर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। आप पिछले 27 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में हैं और 17-18 वर्षों से आप समर्पित रूप से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने मेडिकल की डिग्री मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से प्राप्त की। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई मेडिकल एसोसिएशंस के भी आप सदस्य हैं। आपको अनेक पदक एवं सम्मान राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मिले हैं और इनमें से माननीय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तथा माननीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल देवी सिंह पाटिल द्वारा प्राप्त पदक भी हैं। यूएनओ द्वारा भी आप पदक से सुशोभित हैं। बाबा ने तो सभी बच्चों को बहुत सुंदर मेडल दिए पर आप दुनिया के भी बहुत सारे पदकों से सम्मानित ऐसे विशेष रतन सतीश गुप्ता जी का हम बहुत बहुत करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। कैट रिसर्च प्रोग्राम के भी आप प्रमुख इन्वेस्टिगेटर कोऑर्डिनेटर हैं जिसे हजारों भाइयों भाई बहनों को दिल की बीमारियों से निजात दिलाने की दुआएं प्राप्त करने वाले हैं। दिल जो इस तन का है अमूल्य अंग, दिल जो इस तन का है अमूल्य अंग, बताते आप कैसे रहे तंदुरुस्त, ले बाबा का संग, ले बाबा का संग। दिलाराम के दिल में बसते हैं आप, दिलाराम के दिल में बसते हैं आप, त्याग तपस्या सेवा का सुंदर एग्जाम्पल हैं आप, सुंदर एग्जाम्पल हैं आप। दिल के रोगियों को बाबा का संग देकर दिलवाला बनाते हैं आप, दिलवाला बनाते हैं आप। कैसे बाबा का संग करें अभी हम क्लास करेंगे डॉक्टर गुप्ता।
ओम शांति। हम सभी ने परसों मीठे बाबा से महावाक्य सुने। बाबा की क्या डायरेक्शन थी कि बच्चे अभी क्या बनना है, हमें निर्विघ्न बनना है और बनाना है। मैं जब से क्लास से पिछली मुरली भी इसी पर थी, निर्विघ्न बनने पर ही थी कि बाबा ने कहा था कि अभी निर्विघ्न बन के स्वयं निर्विघ्न बनो और अपना वायुमंडल जहां आप रहते हैं, चाहे आप घर में रहते हैं या सेंटर पे रहते हैं, जहां पर भी जो आपका कार्य है वहां उस वायुमंडल को निर्विघ्न बनाओ और साथ साथ अपने साथियों को भी निर्विघ्न बनाओ, अपने नजदीक के संबंधियों को भी निर्विघ्न बनाओ। तो तब से इसी बात पर बहुत गहराई से चिंतन चलता रहा। बाबा के इस पॉइंट पर मनन चिंतन मंथन करते रहे और बाबा से अलग अलग बातें टच होती गई। तो मैं आज जब मुझे कहा गया क्लास कराने के लिए तो फिर मैंने सोचा आज क्या टॉपिक रखें, तो यही टॉपिक मन में आया कि कैसे हम निर्विघ्न बने, कैसे हमारी स्थिति निर्विघ्न बने। तो बाबा की मुरली के महावाक्यों से प्लस इस ज्ञान के विश्लेषण से और अनुभव के आधार पर आज हम इसी बात को गहराई समझेंगे कि हमारी स्थिति निर्विघ्न कैसे बन जाए, हमारे हम जो वैध संकल्प हमारे मन में आते हैं उस पर मुक्त कैसे हो जाएं, ये अटेंशन सदा कैसे रहे हमारे अंदर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस पर आगे अब चिंतन करूं, इसके पहले हम 2 मिनट के लिए एक बार दोबारा से एकाग्रता मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे और अगले 45 मिनट के लिए अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दें ताकि हम एकाग्रता से अपने मन बुद्धि को यहां लगा सकें। और क्योंकि ये हमारा आखिरी सब्जेक्ट भी है, आखिरी सब्जेक्ट है ना, निर्विघ्न बन जाना, संपूर्ण निर्विघ्न बन जाना, कुछ भी होता रहे, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही भयानक समय है, उसमें हमारे कितने भी विघ्न आए कि तो हमारी स्थिति एकदम अचल अडोल होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, क्योंकि विघ्न तो बहुत आएंगे, परेशानियां बहुत आएंगी, उसी को हम गहराई से, हमारे पास सामने कौन कौन से विघ्न आते हैं, कैसे आते हैं, कहां से आते हैं, इसके ऊपर गहराई से चर्चा करेंगे। और कैसे यथार्थ याद, यथार्थ याद, याद तो हम सभी करते हैं किंतु वो याद जिससे विघ्न आते क्यों है, क्यों आते विघ्न, हमारे 63 जन्मों के पापक्रम जो किए हुए हैं वही हमारे सामने विघ्न बन करके आते हैं, चाहे मन में आते हैं, चाहे तन में आते हैं, चाहे वाचा में आते हैं, चाहे कर्म में आते हैं, चाहे संबंध संपर्क में आते हैं, घर में आते हैं, ऑफिस में आते हैं, सेंटर में आते हैं, कहीं भी कोई विघ्न आता है वो अपने ही अपने किए हुए पाप कर्मों का फल है। तो पाप कर्म कैसे विनाश हो सकते हैं, पाप कर्म कैसे विनाश होंगे, यथार्थ याद से, रियल याद से होगा, ऐसे छोटी मोटी याद से नहीं होगा। तो वो यथार्थ याद क्या है जिसके द्वारा हमारे विकर्म विनाश हो जाएं और हम सदा के लिए निर्विघ्न बन जाएं, ऐसी आज हम इसी बात को हम गहराई से अगले 45 मिनट चिंतन करेंगे। चलिए 2 मिनट के लिए सभी अपने मन बुद्धि को सारी दुनिया से स्विच ऑफ कर लें, सिर्फ एक ही संकल्प में आ जाएं कि मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु चमकता हुआ सितारा दोनों वृक्षों के मध्य यहां बैठा हूं, लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर, 3 इंच नीचे, और मुझ आत्मा से 7 लाइट कहो, 7 एनर्जी कहो, सारे रूम रूम में जा रही है, और मेरा बाबा मुझसे कितनी दूर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है, मैं और मेरा बाबा, वो भी एक चमकता हुआ सितारा परमधाम में, और उससे वो लाइट मुझ में आ रही है, शक्ति आ रही है, 7 एनर्जी मुझ में आ रही है, और मुझसे होती सारे शरीर में जा रही है। इसी स्थिति में 2 मिनट के लिए सब एकदम मन बुद्धि को एकाग्र कर लें और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। चलिए ओम शांति। चलिए अपने मीठे बाबा के महावाक्यों को शुरू में ही हम सिमरण करते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे अभी अपने दिल में चेक करो, दिल में जांच करो कि दिल में संपूर्णता को धारण किया है। क्यों धारण करना है संपूर्णता को? क्योंकि संपूर्ण राज्य में आना है। याद है लाइन? वो बाबा की लाइन याद है, दिल में संपूर्णता को धारण करना है। कौन से दिल में? इस दिल में, इस दिल में, इस दिल में नहीं, आत्मा का दिल। ये दिल तो एक पंप है, ये तो शरीर का दिल है, किंतु आत्मा का दिल, दिल में निर्विघ्न स्थिति बनानी। दिल में मेरी निर्विघ्न स्थिति हो। विघ्न कहां आएंगे? पहले दिल में आते हैं। तो दिल हमारा निर्विघ्न बने, दिल में ऐसे क्या विघ्न है, दिल में ऐसी क्या बातें हमारे अंदर आ गई हैं जिससे निर्विघ्न स्थिति हमारी नहीं रहती है, दिल में वो संपूर्णता कैसे आए, उस पे आज हम चिंतन करते हैं गहराई से। दिल में कैसे बाबा को, दिलाराम को संभालो। जब दिल में दिलाराम को संभालेंगे, आप बार बार आपने मुरली में कल सुना होगा, परसों सुना होगा कि दिल अगर बाप को सदा साथी बनाकर रखो तो कोई माया का विघ्न हमारे सामने आ नहीं सकता। अगर दिल में बाप को समा कर रखो तो कभी कोई विघ्न हमारे सामने नहीं आ सकता है। और उससे जो वायुमंडल का निर्माण होगा, उस वायुमंडल में रहने वाले सभी भाई बहनों को, भाई 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 बहन भी क्या हो जाएंगे? निर्विघ्न बन जाएंगे। वो जो वायुमंडल कैसे बने, हमारे आसपास का वायुमंडल में निर्विघ्न कैसे बने, तो वो आज हम इस बात पर गहराई से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल की, बात करते हैं दिल कौन सा, दिल कैसा। जैसा कि आप सबको पता है, आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, एकदम अति सूक्ष्म, जिनको इन आंखों से देख नहीं सकते। और उस आत्मा से, आत्मा इस शरीर को चलाती है। ये स्थूल शरीर है, इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है वो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा है। ये स्थूल शरीर है किंतु उसको चलाने वाली सत्ता क्या है? अति सूक्ष्म, जिनको देख भी नहीं सकते हैं इन आंखों से। तो वो जो सत्ता है, यहां से 2.5 इंच अंदर, यहां से 3 इंच नीचे, और वो कैसे चलाती है इस शरीर को, कैसे चलाती है? उसके पास 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, सभी जानते हैं। अब जो है मन बुद्धि संस्कार तो है, किंतु एक क्या वो एनर्जी है आत्मा के पास? जैसे इस बलम में दो एनर्जी है इसके अंदर, ये बल सामने देख रहे ना, इसके अंदर लाइट है और गर्मी भी है। मैं यहां बैठा हूं तो गर्मी, इससे पसीना भी आ जाता है ना, इतनी लाइट इससे निकलती है। सूरज में भी दो एनर्जी है, दो ऊर्जा है, एक गर्मी और एक लाइट, प्रकाश और गर्मी। ऐसे ही इस बलब में भी दो एनर्जी है, किंतु आत्मा में 7 लाइट है, 7 एनर्जी है जिससे वो शरीर को चलाती है। तो पहली पहली जो आत्मा की शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, वो है बुद्धि है। और दूसरी शक्ति जो है सूक्ष्म शक्ति, वो मन है। क्योंकि जब हमें महान बनना है तो हमें महीनता में जाना पड़ता है। महान बनने के लिए किसमें जाना पड़ता है? महीनता में जाना पड़ता है। अगर हम ऊपर ऊपर से ज्ञान को समझते हैं, जब तक ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, हमारी योग की गहराई नहीं आ सकती है। और जब हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हमारी योग की गहराई आएगी। योग की गहराई आने से वो ज्ञान हमारे जीवन में धारण होगा। जैसे अगर आपने देखा हो, जब कपड़े की रंगाई करते हैं ना, आजकल तो कपड़े की रंगाई करते नहीं शायद, पहले जब छोटे थे हम, जब ही तो कपड़ों को रंग बदलना पड़ता था। स्कूल बदल जाता था तो स्कूल की ड्रेस चेंज होती थी। और फिर हम क्या करते थे, हमारी मदर क्या करती थी, हमारे बच्चों के कपड़े इकट्ठे करके रंगाई वाले के पास जाते थे। तो मान लीजिए मेरी ब्लू रंग की शर्ट है पहले, और अभी पीले रंग की करनी है, तो ब्लू पे कभी पीला रंग चढ़ सकता है? नहीं चढ़ सकता ना। तो पहले क्या करते थे, पहले उसको ब्लीच करते थे, उसका ब्लू रंग उतारते थे ब्लीच में डाल के, तो ब्लू रंग का व्हाइट रंग बन जाता था। और व्हाइट रंग बनने के बाद, सफेद रंग बनने के बाद, फिर उसको पीले रंग में डालते थे। कि तो पीले रंग में डालने से रंग लगता है क्या? नहीं। फिर उसको कढ़ाई में डाल के उबालते थे। हम लोग देखते थे कैसे वो रंग चढ़ाते हैं। और जब रंग चढ़ जाता था, जब उबालते थे, तो रंग उसके अंदर, कपड़े के अंदर चला जाता था। और फिर उसके बाद उसको सुखाते थे और सुखा के फिर प्रेस करके फिर उसको हम पहनते थे, है ना। तो ऐसे ही ये जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान कब हमारे अंदर जाएगा, जब पहले पुराना रंग उतारेंगे। तो जब तक पुराना रंग रंगा है अंदर है, तब तक नया रंग लग नहीं सकता है। तो शिव बाबा जब प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, 1936 में उनका अवतरण हुआ, जो कल हम परसों हमने 78वां शिव अवतरण दिवस मनाया, शिवरात्रि मनाई, शिव जयंती मनाई। तो जब शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो शूद्र जो हम बाबा के बच्चे सत्युग में देवी देवता थे, त्रेता में क्या बने, क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य बने, और कलयुग में क्या बन गए, शूद्र बन गए। शूद्र माना, शूद्र माना जिसकी बुद्धि में, जिसकी बुद्धि और मन में चार बातें समाई हुई हैं। जिसकी बुद्धि और मन में क्या बातें समाई हैं, चार बातें समाई हैं। एक तो देह समाई होती है, शूद्रों के मन में और बुद्धि में सिर्फ देह समाई होती है, अपनी देह या किसी और की देह। दूसरा कि देह के संबंध समाये होते हैं। तीसरा देह के स्वभाव संस्कार समाये होते हैं। और चौथा देह के पदार्थ समाये होते हैं। हमने देह के जो पदार्थ माना, जो घर में हमारे सामान रहता है, मकान है, कार है, कपड़े हैं, जायदाद, जो भी चीजें हैं, खाने की चीजें, पीने, उन्हीं में उसी में बुद्धि लगी रहती है। दुकान है, धंधा है, उसी में बुद्धि लगी रहेगी। ये मतलब शूद्र माना जिसकी बुद्धि हद में रहती है। देह, देह के सर्व संबंध, पत्नी, पति, बच्चे, माँ बाप, बच्चे, माँ बाप, चाचा, काका, है ना, उन्हीं में। और देह के स्वभाव, देह का स्वभाव, ये पांच विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। और देह का संस्कार क्या है, संस्कार माना आदत। देह की आदत क्या है, आलस्य, जो आज बाबा ने कहा ना, मुरली में कहा ना, आलस्य और अपवित्रता का अंश क्या है, अलबेलापन और आलस्य। तो ये आलस्य अलबेलापन देह की आदत है। जैसे अपने को देह समझेंगे ना, आलस्य आएगा, अलबेलापन आएगा। दूसरों में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय, डर लगना, जल्दीबाजी करना, ईर्ष्या द्वेष करना, ये देह की आदत है, संस्कार है। और देह के पदार्थ आप जानते हैं, ये सब हद की बातें हैं। तो जैसे ही बाबा आता है, तो हम शूद्र को पहले ब्राह्मण बनाता है। ब्राह्मण कैसे बना, ब्राह्मण माना जैसे ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा माने बड़ा, विशाल, बेहद, मां, बेहद की मां, मतलब सारे विश्व की मां। ब्रह्मा बाबा सारे विश्व की मां है, शिव बाबा सारे विश्व का, बेहद का पिता है। तो शिव बाबा बेहद की मां के द्वारा हम बच्चों को ब्राह्मण बनाता है। तो ब्राह्मण का अर्थ क्या हुआ, ब्राह्मणा विशाल, बेहद, जिसका मन और बुद्धि बेहद में हो। ब्राह्मण जिसकी मन और बुद्धि बेहद, माना विशाल मन और बुद्धि वाले को क्या कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं। अर्थात उसकी बुद्धि में देह नहीं होती है, नहीं, उसमें यह होगा, मैं देह नहीं, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। दूसरी बात, उसकी देह, उसकी बुद्धि में देह के सर्व संबंध नहीं, उसकी बुद्धि में यह होता है, मेरे, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है। वो मेरी मां भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है और सज्जन भी है, और बच्चा भी है। मुख्य नौ संबंध, वैसे तो सारे संबंध लगा सकते हो, बेहद संबंध है। जो भी संबंध चाहो आप, जहां जो संबंध की आवश्यकता हो, वही संबंध बाबा निभाता है हमारे साथ, बेहद है। आत्मा हद है, बेहद है, आत्मा हद है, बेहद है, बेहद है ना, अभी यहां पर, अभी कहां पर, नहीं, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच जाएगी। आत्मा की शक्ति मन है, कहीं एक सेकंड में, अभी यहां एक सेकंड में अमेरिका पहुंच जाएगा, तो बेहद हुआ ना। एक सेकंड में यहां, एक सेकंड में परमधाम, परमधाम कितने दूर है यहां से, हां, एक सोच की दूरी पर से, कितने दूर है बाबा, कितने दूर है हमारे, हमारे से शिव बाबा कितने दूर है हमसे, कितने दूर है, कितने किलोमीटर है, सिर्फ एक सोच की दूरी पर है ना, सोचे, अच्छा अभी आप बॉम्बे में रहते हैं मान लीजिए, या राजस्थान में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, जयपुर जयपुर में आपका घर कितनी दूर है यहां से? सोचे और पहुंच गए, कमरे में, बेडरूम में पहुंच गए, ड्राइंग रूम में पहुंच गए ना, सोचते ही पहुंच गए ना। ऐसे ही हमारा घर कितनी दूर है? एक सेकंड की दूरी पर है। तो हमारे एक एक संबंध जैसे हम सोचते हैं वैसे बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं। तो ये भी बेहद है ना, हमारे संबंध बाबा भी बेहद है, परमधाम बेहद है। और फिर हमारा जो जो देह के पदार्थ हमने बताया ना, देह के पदार्थ तो ये होते हैं, और आत्मा का पदार्थ कौन सा होता है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा के स्वभाव ये 7 गुण हैं: ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां। अंग्रेजी में नाम याद करना हो ना तो कैसे याद करेंगे? KP2 लो हाई ब्लड प्रेशर, K फॉर नॉलेज, P फॉर प्योरिटी, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस, P फॉर पावर्स। तो इस सीक्वेंस में है, ज्ञान से पवित्रता है, पवित्रता से शांति है, शांति से प्रेम है, प्रेम से खुशी पैदा होती है, और खुशी से आनंद आता है, और आनंद से शक्तियां आती हैं। ये 7 एनर्जी एक दूसरे से कनेक्टेड है। 7 जो आत्मा की सूक्ष्म एनर्जी है, ऊर्जा कहो, गुण कहो, ये 7 एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये आत्मा का स्वभाव है, मूल नेचर है आत्मा की। हर आदमी को ज्ञान चाहिए, पवित्रता चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो आत्मा के अंदर मूल रूप में विद्यमान है। और आत्मा का जो संस्कार आदत क्या है? आत्मा का संस्कार आलस्य नहीं है, आत्मा का संस्कार सदा जागती ज्योत है, सदा जागती ज्योत, अलर्ट, आलस नहीं, सदा अलर्ट, एक्टिव, अलबेलापन नहीं, एक्यूरेट, दूसरों में दोष निकालना नहीं, गुण ग्राहक, सबसे गुण लेना, बदला लेने की भावना नहीं, स्वपरिवर्तन की भावना, अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना, शक करना नहीं, निश्चय, दुनिया निश्चय पे चलती है, विश्वास पे चलती है ना, तो निश्चय, बदला और अनुमान नहीं, विश्वास, चिंता नहीं, निर्भयता, भय नहीं, चिंता नहीं, निश्चिंत, बेफिकर, भय नहीं, निर्भयता, जल्दीबाजी नहीं, धैर्यता, और ईर्ष्याद्वेष नहीं, विश्व कल्याणकारी, सबके प्रति कल्याणकारी, सबका कल्याण हो, ये आत्मा की संस्कार है, नेचर है। और आत्मा के पदार्थ क्या है? दैवी गुण। ये जो स्थूल चीजें हैं ये तो आज है, कल नहीं होंगी, दैवी गुण आत्मा के साथ ही आते हैं, जाते हैं। मान लीजिए आज भूकंप आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, मैं बच जाऊं या हम में से कोई बच जाए, और उसके बाद उसको काम धंधा कैसे मिलेगा? तो आत्मा के, अगर उस आत्मा में सत्यता है, पवित्रता है, निर्भयता है, दैवी गुण है, मतलब ये वाले, आज्ञाकारी है, ईमानदार है, फरमान बरदार है, सरलता है उसके, नम्रता है, मीठा बोल है, दृढ़ता है, निर्भयता है, सॉरी सरलता, संतुष्ट रहने वाली आत्मा, मुस्कुराने वाला सदा है, तो क्या होगा? किसी भी काम में सक्सेसफुल हो जाएगा। तो रियल प्रॉपर्टी है ये। हम किसी आदमी को अपने काम पे रखते हैं, उसमें क्या देखते हैं? यही तो चीज देखते हैं ना। तो ये आत्मा के मूल स्वभाव संस्कार। तो ये अभी बुद्धि में रिवाइज करने का, ठीक है? तो मैं ब्राह्मण हूं, ये अगर यही पक्का कर ले, और ब्राह्मण की परिभाषा क्या, यही पक्का करे, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? ब्राह्मण माना बेहद, मेरी बुद्धि और मन में क्या भराओ, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं, मेरे सर्व संबंध उसके साथ हैं, और संसार एक नाटक है, इसमें हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला, और आत्मा के पदार्थ तो मैंने बताए। तो ये जो है बेसिकली, ये जो बेहद में, अगर जरा भी मेरे देह का भान आता है, इसका मतलब मैं अभी पूरा पक्का ब्राह्मण नहीं हूं, देह के संबंध में बुद्धि जाती है तो पक्का ब्राह्मण नहीं हूं, देह के स्वभाव संस्कार में बुद्धि जाती है इसका मतलब पक्का ब्राह्मण नहीं हूं, देह के पदार्थों में बुद्धि जाती है तो बता पक्का ब्राह्मण नहीं, खाने पीने में बुद्धि जाती है देख पक्का ब्राह्मण नहीं, तो ब्राह्मण की डेफिनेशन ही समझे, है ना। तो आत्मा जो है, आत्मा से वो पहली एनर्जी निकलती है ज्ञान निकलता है, पहली जो एनर्जी निकलती है ज्ञान, है ना। तो ज्ञान माना एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, ए फॉर आत्मा, बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, डी फॉर ड्रामा। तो सार रूप में ज्ञान एबीसीडी ही है। तो जितना अधिक हम इस एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते जाते हैं, उतना अधिक हमारा मन और बुद्धि पवित्र होती जाती है, विचार कम होते जाते हैं। और जैसे जैसे विचार कम होते जाते हैं, मान लीजिए मेरे 15 विचार चलते हैं नॉर्मली एक मिनट में, नॉर्मली वैसे 15 विचार चलते हैं हम लोगों के, दुनिया में लगभग एवरेज 25 से 30 विचार एक मिनट में चलते हैं, हम ब्राह्मणों के 15 विचार चलते हैं एक मिनट में। तो मेरे मान लीजिए 15 विचार हैं, और मैं इस एबीसीडी को बार बार रिवाइज करता हूं, रिवाइज माना मनन करना, रियलाइज माना चिंतन और मंथन करना, रियलाइज माना रियल को देखना, रियल को समझना, रियल को फील करना, रियल को अनुभव करना, रियल माना वास्तविक सत्य, सत्य को अनुभव करना। तो जितना अधिक हम इसको बार बार रिवाइज मनन करते हैं और रियलाइज माना चिंतन और मंथन करते हैं, उतना अधिक हमको ये बार बार फील करें, मैं कौन हूं, मैं ये हूं, मेरा कौन है शिव बाबा, वो कौन है, सात गुणों का सागर है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, सब शक्तियों का सागर है। और उससे मेरा क्या संबंध है, मां का संबंध है ना, वो मेरी मां भी है, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहा है, और मुझे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दे दी है वरदान में, जिसमें बैठो एक सेकंड में यहां से बैठो कहां पहुंच जाएंगे, सीधे सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठ पहुंचेंगे, सूक्ष्म वतन में नहीं, सीधे बाबा की गोद में उतरेंगे जाके। और बाबा कैसे बैठा है, बाएं फैला के, है ना, भीड़ है क्या बाबा के पास, अकेला बैठा है, आओ बच्चे आओ, है ना, एकदम बाबा से जाके चिपक जाओ, है ना। तो मां से क्या करते बच्चे, चिपक जाते ना जाके। बाप के रूप में ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है, टीचर के रूप में स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बना दिया है, सतगुरु के रूप में त्रिलोकी नाथ बना दिया है, मतलब तीनों लोकों में आने जाने का फ्री है, कोई कोई बंधन नहीं, कोई चेकिंग नहीं है, जब चाहे सूक्ष्म वतन में जाओ, जब चाहे परम धाम में जाओ, जब वापस चाहे वापस आ जाओ, है ना। त्रिलोकी नाथ बना दिया सतगुरु के रूप में, बंधु के रूप में सारे बोझ ले लिए, सारे बोझ क्या बच्चे साहब, अपने बोझ सारी जिम्मेवारी मुझे दे दो। सखा के रूप में कहा, जो मन में तुम्हारे खराबी भरी पड़ी ना, जो भी जो बात तुम किसको नहीं बता सकते हो, मुझे बता दो, दोस्त को बता देते ना सारी बातें, जो घर वालों को भी नहीं बताते। साजन के रूप में दैवी गुणों से सजा दिया है, सर्जन के रूप में जो आत्मा को 5 कीड़े लगे हुए ना, आत्मा के अंदर 5 कीड़े लग गए, कौन से कीड़े लगे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना, ये 5 कीड़ों को मारने की दवाई सर्जन के पास है ना, वो दिल में जो 5 कीड़े लगे उनको खत्म कर देता है सर्जन, है ना, तो उसको खत्म कर देता है। आलस सलबेलापन, ये 10 उसके बच्चे भी है ना साथ में, 5 विकारों के बच्चे 10 हैं, उनको भी खत्म करता है सर्जन। और फिर बच्चा, सारा बोझ वारिस, सब कुछ उसको नाम कर दो, बलिहार चले जाते, तो नो संबंध हो गए ना। तो जितना हम इसको इस बार बार इसको अनुभव करते जाते, रियलाइज करते जाते, डी ड्रामा जो हुआ अच्छा हुआ, हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट पार्ट बजा रही, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। तो जितना हम इसको बार बार रियलाइज करते जाते, उतना हमारे विचार कम होते जाते, 10 विचार होते तो मन थोड़ा शुद्ध होने लगता है, बुद्धि शुद्ध होने लगती, जब 8 विचार होते तो मन में शांति महसूस होने लगती, शांति माना कम विचार, पॉजिटिव विचार। 8 विचार को हम अल्फा रिदम कहते हैं, अल्फा रिदम ब्रेन की रिदम होती है ना अल्फा, तो अल्फा स्टेट में पहुंच जाते तो हमें शांति अनुभव होने लगती है। अशांति किसे कहते हैं, ज्यादा विचार हो जाए तो, 25-30 विचार हो जाए तो अशांति कहते हैं, 8 हो गए तो शांति, 6 विचार हो गए तो रूहानी प्यार अनुभव होने लगता, मतलब रूहानी प्यार का मतलब दूसरों की केयर करना, रेस्पेक्टफुल केयर, अनकंडीशनल केयर, निस्वार्थ प्यार, निस्वार्थ दूसरों की देखभाल करना, आशा की भावना से नहीं कि मैं किसको करूं तो मेरे को ही करेगा, नहीं, मुझे सबको देखभाल करनी, ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं, हम आपस में भाई भाई हैं और मेरा फर्ज है सबकी केयर करना, उससे फिर खुशी अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। चार विचार आते तो अत्यंत सुख की अनुभूति होती, जब दो विचार आ जाते तो आनंद की अनुभूति होती। दो विचार माना मैं और बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा की गोद का अनुभव होता। और जब सिर्फ एक विचार रह जाता तो हम परम धाम में पहुंच जाते, सिर्फ बाबा, आत्मा बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती और हम बाबा के प्यार में खो जाते। वो है सर्वशक्तिमान की स्टेज, तो हम परम धाम में पहुंच जाते। और ये स्टेज ऐसी स्टेज है जब परम धाम में जब आपका सिर्फ एक ही विचार रहता, तो ये जो विचार है ये है शक्तिशाली याद, ये है यथार्थ याद। एक ही विचार रहता कि बस मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बाबा की संतान हूं। जब ऐसी स्थिति जब हमारी होती तो हमारे विक्रम विनाश होने लग जाते। तो यथार्थ याद माना क्या है? यथार्थ याद माना वो याद जिसमें हम निराकारी आत्मा बन, निराकारी आत्मा निराकारी घर में, मतलब निराकारी वतन में निराकार बाप को याद में टिक जाए, इसके द्वारा हमारे विक्रम विनाश होते हैं। निराकारी आत्मा बन निराकारी बाप को निराकारी घर में याद करना, यह है यथार्थ याद। दूसरी शब्दों में बिंदी बन बिंदी बाप को घर में याद करो, परम धाम में याद करो, तो ये है हमारी यथार्थ याद। जब ऐसी स्थिति होती है तो हमारे अब पाप कर्म क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। विघ्न कैसे आते हैं, विघ्न क्यों आते हैं? जब हम द्वापर जब सत्युग में थे तो आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी, सातों तो सतो प्रधान, सतो प्रधान शब्द कहां से है? सतो प्रधान, सतो प्रधान, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, सातों गुणों से भरपूर थी। तो जो आत्मा से जो सात गुण निकल रहे थे तो दिल जो आत्मा के आसपास जगह है ना, जो यहां पर जो सेल्स हैं वो उसको रिसीव कर लेती एनर्जी को, और उस सात गुणों से विवेक बनता है। क्या बनता है? विवेक माना विजडम, परखने की शक्ति। तो परखने की शक्ति को विवेक कहते हैं। तो जब आत्मा सात गुणों में, दिल में सात गुण भरपूर है, दिल माना जैसे बल्ब है ना, बल्ब के बल्ब है सामने, इसके आसपास जो जगह है ना वो दिल है, इसका बल्ब का दिल है। ऐसे ही आत्मा के आसपास जो सबसे ज्यादा पावरफुल जगह है उसको दिल कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, कॉन्शियंस कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। उसी को बाबा गोदी भी कहते हैं, उसी को बाबा पलके भी कहते हैं, वही तीसरा नेत्र भी है, वही दिल ही तीसरा नेत्र है। तो ये सात गुण जब भरपूर हैं तो विवेक हमारा कैसा? ईश्वर जैसा विवेक है, बाप समान विवेक है। और उसके बाहर बुद्धि निर्णय शक्ति है, निर्णय शक्ति हमारी दिव्य है, दिव्य मतलब दैवी गुणों पर आधारित है। दैवी गुण क्या होते हैं? दैवी गुण कुछ और नहीं होते, जैसे तीन प्राइमरी कलर्स होते हैं ना, नीला लाल और पीला, इन तीनों कलर्स को अलग अलग रंगों को अलग अलग देशों में मिलाएंगे, अनुपात में मिलाते हैं तो 150 सेकेंडरी कलर्स बन जाते हैं। जैसे नीला और पीला मिलाए तो हरा बन जाएगा, लाल और पीला मिलाएंगे तो पिंक बन जाएगा, लाल और ब्लू, लाल और नीला मिलाएंगे तो साथ में थोड़ा पीला डाल देंगे तो ब्राउन बन जाएगा, है ना, मटियाला रंग बन जाएगा। ऐसे कितने रंग बन सकते हैं, ऐसे कितने रंग बना लो। तो आत्मा के अंदर जब सात गुण भरपूर है, दिल में सात गुण भरपूर है, तो जब कर्मों में आते हैं, आंखों से देखना, मुख से बोलना, कानों से सुनना, हाथों से कर्म करना, चलना, तो कर्मों में हमारे वो दैवी गुण झलकते हैं। सत्यता दिखाई देगी, चेहरे से दिखाई देगी, निर्भयता दिखाई देगी, सरलता दिखाई देगी, नम्रता दिखाई देगी, बोल में मधुरता, मीठे बोल होंगे, उदारता, बड़ी दिल होगी, सहनशीलता होगी, दृढ़ता होगी, धैर्यता होगी, गंभीरता होगी, संतुष्टता होगी, हर्षित मुखता होंगे। तो ये दैवी गुण तब हमारे जीवन में दिखाई देते हैं। तो दैवी गुण कुछ और नहीं होते, इन सातों गुणों का मिश्रण से दैवी गुण बनते हैं। तो आत्मा जब सातों गुणों से भरपूर है तब दैवी गुण हमारे जीवन में आते हैं, और सतो प्रधान स्थिति को ही पावन स्थिति कहते हैं। धीरे धीरे जब द्वापर युग का शुरू आता है तो ये सातों गुण 50% से कम रह जाते हैं। तो सात गुण जब 50% से कम हो गए तो क्या होता है, अभी एनर्जी कम हो गई, तो आत्मा का जो पहले तो आत्मा राजा थी, स्वराज्य अधिकारी, स्व माने आत्मा, राज्य आत्मा का राज्य था मन बुद्धि संस्कार पर और पांचों कर्मेंद्रियों पर, आठों अंगों पर। और जब ये सातवें एनर्जी कम हो गई उसके बाहर मन होता है, स्मृति के बाहर मैंने बताया ना दिल विवेक बुद्धि, उसके बाद चित्त है सबकॉन्शियस माइंड। जब हमारा बुद्धि दिव्य है, विवेक ईश्वरीय है, तो जो चीज हम चाहें, जो भी निर्णय जो दिल को लगता है, हम तुरंत उसको निर्णय तुरंत ले लेते हैं। विवेक परखता है, बुद्धि निर्णय लेती है और वो बात हमारी मेमोरी में चली जाती है, एकदम रिकॉर्ड हो जाती है। तो देवताओं में सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड शांत और एकाग्र होता है, आनंदमय होता है। इसलिए देवताओं को क्या कहते हैं, सच्चित आनंद। दिल में सत्य है, सत्य माने सात गुण है, और सच्चित दिल चित्त में आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूप। जिससे देवताओं का चेहरा सदा आनंद स्वरूप दिखाई देता है। और मन मन में एबीसीडी रहता है, मन ना मन में चार बातें हैं, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प। तो स्मृति में क्या रहता है, एबीसीडी, ये ज्ञान, ज्ञान स्मृति में आ जाता है, स्मृति स्वरूप रहते हैं, आप समझ रहे हैं। देखो इसमें क्या फर्क है, एक डॉक्टर बन रहा है अभी, एमबीबीएस में एडमिशन लिया पहले साल में, तो वो डॉक्टरी उसने एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़नी शुरू की, डॉक्टर नहीं बना अभी, डॉक्टरी पढ़ रहा है, डॉक्टरी उसको आती है, कुछ बातें आती हैं, किंतु अभी डॉक्टरी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। किंतु डॉक्टर बनने के बाद 5.5 साल के बाद अब डॉक्टर बन गया, डॉक्टरी कर सकता है। अब वो जो पांच उसने जो 19 सब्जेक्ट पढ़े थे उसने पढ़ लिए, अब उसका स्वरूप बन गया, अब वो उसके द्वारा पेशेंट देख के उसका इलाज कर सकता है। तो जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो बाबा हमें सिखाता, बच्चे तुम आत्मा हो। तो आत्मा, जब हम अपने को आत्मा समझने लगते हैं तो हमारी आत्मिक स्थिति होती है। जब हम इसमें खो जाते हैं इस पढ़ाई में, तो वो फरिश्ता स्थिति होती है, उसमें खोए हुए रहते हैं। उसमें हम, जैसे बच्चा क्या करता है पढ़ाई के दिनों में, माँ बाप से बात करना भी छोड़ देगा, टेलीविजन देखना भी छोड़ देगा, घूमना भी छोड़ देगा, सिर्फ पढ़ाई में लगा रहेगा। खाने में बुद्धि भी हट जाएगी, ये खाऊं ये खाने, बस बुद्धि दिन रात पढ़ाई में लगी रहेगी, एग्जाम हो जाएगा उसके बाद देखूंगा। तो जैसे वो सब बातों से रिश्ता उसका खत्म हो जाता है, फरिश्ता। तो ये जो है आत्मिक स्थिति शुरू में, फरिश्ता वो प्रोसेस है बीज रूप स्थिति में जाने का, स्मृति स्वरूप बनने का, और जब डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर बन गया ऐसे ही। तो जब शुरू में हम आत्मिक स्थिति होती है, फिर हम उसमें खो जाते हैं, उस पढ़ाई में दिन रात, सुबह से लेकर अमृत वेले 3:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसी में लगे रहते हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा में लगे रहते हैं, उसी में बुद्धि लगी रहती है। भले हम काम कर रहे हैं ऑफिस में, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, बुद्धि वहीं लगी है बाबा में, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज क्या कहा, बाबा ने आज ये क्या कहा। तो वो क्या होता है, हमारे जैसे फरिश्ता स्थिति बन जाती है धीरे धीरे। और जब ये चीज हमारे अंदर समा जाती है, भरपूर हो जाती है, हमारा पेपर होता है आखिरी में, आखिरी पेपर होता है, उसमें पास हो जाते हैं, तो हम क्या बन जाते हैं, स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। मतलब वो स्मृति हमारे अंदर रिकॉर्ड हो गई ना। तो ये जो है हमारी सत्संग में, हमारी जो स्मृति जो होती है, स्मृति में हम ये एबीसीडी ज्ञान के स्वरूप बन जाते हैं। और वृत्ति हमारी आत्मिक रहती है, भावना सबके प्रति शुभ रहती है, संकल्प सबसे शुद्ध शक्तिशाली और कल्याणकारी रहते हैं सबके प्रति, दृष्टि कमल नयन होते हैं, कमल मुख, कमल करण, कमल हस्त, कमल पैर, है ना, सब कुछ कमल, माना न्यारा प्यारा, सबसे न्यारा प्यारा। तो ये स्थिति हमारी रहती है। द्वापर युग में जब एनर्जी कम हो गई तो फिर हमारे अंदर सातों गुण कम हो गए, तो अमन राजा बन जाता है मनुष्य, मनुष्य माना मन का, मन मन के वश में। अब मन राजा बन गया तो क्या होता है, उनको कोई विघ्न आता है क्या, देवताओं को, जब सातों गुणों से भरपूर है तो कोई विघ्न नहीं है। जब सातों गुण कम हो गए, 50% से कम, मन राजा बन गया, मनुष्य बन गए, देवता से मनुष्य बन गए, तो फिर अब मन क्या करता है, मन का कनेक्शन पांचों कर्मेंद्रियों से होता है, तो पांचों तत्वों के बारे में देखना शुरू करता है, देह को देखना शुरू करता है, देह के संबंधों को देखना शुरू करता है, देह के पदार्थों को, देह के स्वभाव संस्कार को देखना शुरू करता है। और वो अंदर दिल में जाने लगती है, वो बातें दिल में, वो बाने जा रहा है दिल में, क्या चला, देह चली जाती है, दिल में क्या जाता है, देह चली जाती है, देह के संबंध चले जाते हैं, देह के स्वभाव संस्कार दिल में चले गए, देह के पदार्थ दिल में चले गए। आज थोड़ा सा कुछ आपके कार को कोई पत्थर मार दे तो क्या होता है, क्या बुद्धि में क्या रहता है, फिर सारा टाइम मेरी कार तोड़ दी, मेरा शीशा तोड़ दिया, किसने तोड़ा, कपड़े पे दाग लग जाए थोड़ा सा किसी बात खाने का, मेरे को दाग लग गए, देख तो नहीं ले रही कितना गंदी होगी मेरी शर्ट ना? जो पदार्थ सारा टाइम बुद्धि दिल में क्या, यही शर्ट चली गई ना, पैर में चोट लग गई, घुटने में दर्द हो रहा है, दिल में क्या चला गया, मेरा घुटना खराब है। नहीं, आपको चाय पीनी, चाय नहीं मिली, मेरे को चाय पीनी, सिर में दर्द हो रहा है। नहीं, तो दिल में ये चला गया, तो विघ्न आया नहीं आया, तो इस तरह से दिल में अब जैसे अब वो तो रजो प्रधान स्थिति थी, सतो तमो माना अंधेरा, रजो माना शाम, अब सातो गुण ना के बराबर रह गए, अब दिल में क्या घुस गया हमारे, यही देह, सारा टाइम देह दिल में घुसी हुई है, देह के संबंध घुसे हुए हैं, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ, देह के संबंध, चाचा मामा काका सब अंदर, सब अपनी देह सबसे पहले बड़ी, इतनी बड़ी घुसी है, मतलब अंदर से सब सारा टाइम देह के बारे में बुद्धि चलती है, संबंधों के बारे में बुद्धि चलती है ना, और पदार्थ स्वभाव, मुझे ये चाहिए, मेरा स्वभाव बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मैं बहुत सेंसिटिव हूं, मुझे बात बात में रोना आता है, मेरे को बहुत जल्दी रहती है ना, मेरे को बहुत डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है ना, मेरे को चिंता बहुत होती है, अभी बच्चा स्कूल से नहीं आया, क्या हो गया, इतनी देर कहां से लगा दी, है ना, वो सुधरता ही नहीं है, ईर्ष्या, उससे मेरे को स्वभाव, उसको मेरे को बैठना अच्छा नहीं लगता है, लगाव झुकाव प्रभाव या टकराव, ये घुस गया दिल, ये पांचों विकार उनके 10 बच्चे अंदर घुस गए, तो ये है विघ्न, दिल में ये बात घुस गई है ना, अभी क्या करें, तो मन में अभी एबीसीडी नहीं, मन में अभी एबीसीडी नहीं है, मन में ये चार बातें, मन में भी चारों बातें स्मृति में है, वृत्ति कैसी हो गई है सबके प्रति, ये लगाव झुकाव टकराव वाली भावना, जो जिससे लगाव झुकाव उसको अच्छे लगते हैं, शुभ भावना, बाकी के प्रति दुर्भावना, संकल्प संकल्प वैसे चलते जैसे जैसे जैसी भावना होती है, वही चेहरे से दिखाई देता है, नहीं होता ऐसा, अब क्या करें, अब बाबा हमें बताता है, बच्चे दिल में दिलाराम को बिठा लो, दिल में दिलाराम को बसा लो, विघ्न इसी कारण आ रहे हैं, विघ्न इसी कारण से आ रहे हैं, थोड़ा सा बच्चे कुछ हो गया, थोड़ा सा धंधे में कुछ हो गया, थोड़ा दुकान में ऊपर नीचे हो गया, थोड़ा सा कहीं मुझे खाने को मेरे हिसाब से नहीं मिला, मेरे को मेरी दवाई कम पड़ गई, ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज की दवाई, हार्ट की दवाई, तो बुद्धि उसमें चलती रहेगी, थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, सारा टाइम यही विघ्न है, मन में विघ्न, तन में विघ्न, है ना, बोल में कुछ, मेरे को बोलने की आदत है, थोड़ा गर्म बोलने की आदत है, या बहुत सेंसिटिव हो, आंखों में आंसू आ जाए थोड़ी देर में ही, है ना, ये भी तो विघ्न है, है ना, कर्म में विघ्न है, संबंध में विघ्न है, जो आपके संबंधी है, संपर्क में दोस्त है, आते ही दूसरी बातें करना शुरू कर देते हैं, है ना, आपके ऐसे लोगों संग है जो आपका वातावरण खराब कर देते हैं, विघ्न है कि नहीं, नहीं, तो ये जो है यही विघ्न है जो हर लेवल पे हमको आते हैं, इसकी जड़ क्या है, जड़ है दिल, दिल में दिलाराम को बसा लो, बाबा ने यही शुरू किया था, दिल में संपूर्णता को लाओ, संपूर्णता क्या है, संपूर्णता है सात गुण, सातों गुणों को भर लो, कैसे भरेंगे, दिल में बाबा कब आएगा, दिल में बाबा तब आएगा जब सच्ची दिल होगी, सच्ची दिल, साफ दिल, सच्ची दिल पर साहब राजी, सच्ची दिल माना जिस दिल में बार बार हम ये रिवाइज करें, मैं कौन हूं, सत्यता, सत्यता क्या है, मैं देह नहीं हूं, मैं ये हूं, चमकता हूं, सितारा हूं, सत्यता ये नहीं कि मेरा ये चाचा है, ये मेरा मामा है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, नहीं, सत्यता ये है कि ये वो मेरा है, मेरे सर्व संबंध उसके साथ है, बाकी के साथ मेरी ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, पति पत्नी के साथ, भाई बहनों के साथ मेरा फर्ज है, पिछले जन्मों का हिसाब किताब मुझे चुकतू करना है, वो मैं करना ही है मुझे, जैसे किसी बैंक का लोन देना है तो मुझे देना ही है ना, इंस्टॉलमेंट तो देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेंगी या नहीं देनी पड़ेगी, लोन लिया हुआ पिछले जन्म में वापिस करना ही पड़ेगा, सुख दिया है सुख लेना पड़ेगा, दुख दिया है दुख लेना पड़ेगा, आप छूट नहीं सकते, नहीं छूट सकते, नहीं छूट सकते हैं क्या, छूट नहीं सकते, तो वो मेरा फर्ज है, क्योंकि फर्ज भी कैसा पूरा करूंगा जब वहां से सातों एनर्जी आएंगी तो, है ना, क्योंकि हर संबंध में क्या चाहिए, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए ना, पवित्रता चाहिए, हर संबंध में चाहिए, हर संपर्क में चाहिए, नहीं चाहिए तो कहां से मिलेगी, मार्केट में तो मिलती नहीं है, है ना। तो ये जब बार बार हम रिवाइज करें, एबीसीडी को रिवाइज करें, जितना हम एबीसीडी को रिवाइज और रियलाइज करते हैं, मनन चिंतन मंथन, मतलब ये मुरली, मुरली क्या है बेसिकली, मुरली है बाबा की श्रीमद, यही ज्ञान है, यही मुरली है, यही अमृत है, यही एबीसीडी है। मुरली में क्या होता है बाबा की, रोज मुरली में क्या, बच्चे आत्म में मानी होके बैठे हो, बाप टीचर सतगुरु याद है, सृष्टि के आदि रचता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान है, बाबा ने तुम्हें परिचय दिया है, बच्चे जो हुआ उसको बीती को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, सब विक्रम विनाश हो जाएंगे, नहीं तो एबीसीडी तो है ना। तो ये इतना हम ज्यादा बार उठते बैठते चल, आज बाबा ने कहा ना बहुत प्यार से उठते बैठते, सवेरे सवेरे तो याद करना ही है, किंतु उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर कर्म करते यही बस अंदर अंदर घुमाते रहो, आज बाबा ने ये कहा, आज बाबा ने ये कहा, मम्मा का था ना स्लोगन, बाबा का कहना और मम्मा का करना, ये मुरली ही बाबा का कहना है, सुबह सुनी शाम को होते होते वो मुरली हमारे अंदर चली जाए, उसके स्मृति स्वरूप बन जाए, ये बार बार उसके स्टेप है ना, मनन चिंतन मंथन सिमरण, ये चार स्टेप में मुरली को सारा दिन मनन माना रिवाइज करते रहो, चिंतन माना अपने से मिला के देखते रहो, मंथन माना फिर उसको बार बार, बाबा ने आज ये क्यों कहा, क्योंकि बाबा का हर वाक्य है, हर महावाक्य बाबा का गुह्य है, गोपनीय है, रहस्य युक्त है, अंदर जाओ, बहुत गहराई में जाओ, बाबा ने क्यों कहा ये, इसका मतलब क्या है, तो उसकी गहराई में तो आपको मंथन मक्खन निकलेगा, उस मक्खन को बार बार सिमरण करो, बाबा की महिमा करो बार बार, तो वो अंदर बैठता जाएगा है ना। तो इसको जितना हमारी, उससे दिल हमारी सच्ची होती जाएगी, सच्ची दिल होती जाएगी, जब इस दिल सच्ची दिल में फिर दिलाराम आ जाए। दिलाराम कौन है? दिलाराम ज्ञान का सागर है। कौन है दिलाराम? कौन है? ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर। अब दिलाराम मेरे दिल में आके बैठ गया तो क्या होगा, क्या होगा फिर? मेरा दिल सातों गुणों से भर जाएगा, नहीं भर जाएगा? तो विवेक, जो मेरा विवेक अभी कंफ्यूज है, पहले विवेक मेरा कंफ्यूज है, कंफ्यूज में ना, उससे कोई डिसीजन नहीं ले पाता, परख नहीं पाता ठीक क्या गलत क्या, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, निर्णय नहीं कर पाती, हर फाइल कहां जा रही है? सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, चित्त में जा रही है, चित्त अशांत और चंचल हो गया है, स्मृति में नहीं जाती है, सारी बातें कहां जा रही है? सब मैं डिसीजन ले ही नहीं पाता, डिसीजन लू तो कॉन्शियस माइंड में जाए ना, तो मेरा अनकॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड बड़ा होता जा रहा है दिन पे दिन, इसलिए सोते ही सपने आने शुरू होते हैं, डरावने सपने, खराब सपने, गंदे सपने, नींद फ्रेश नहीं होती है, नींद में फ्रेश नहीं होते, सुबह अमृत वेला में नींद आती है इसलिए। तो जब सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते हम ये एबीसीडी को चिंतन, बाबा की मुरली का चिंतन, मनन चिंतन मंथन सिमरन करते रहेंगे, तो फिर हमारा दिल सच्ची और साफ होती जाएगी, बाबा उसमें आता जाएगा, और बाबा के आने से क्या होगा, वो सातों गुणों से हमारा दिल भर जाएगा, विवेक हमारा फिर वापस ईश्वरीय होने लगेगा, बुद्धि वापस दिव्य बनने लगेगी, और चित्त हमारा शांत और एकाग्र होने लगेगा। जब चित्त शांत और एकाग्र होगा तो फिर अब बुद्धि में, जो हमारे स्मृति में रिकॉर्डिंग क्या होगी, इस एबीसीडी की नई रिकॉर्डिंग, नए संस्कार रिकॉर्ड हो जाएंगे, स्मृति ही संस्कार है, ये नए संस्कार बनेंगे हमारे, ब्राह्मणों के संस्कार बन जाएंगे। तो ब्राह्मणों के संस्कार जब उसमें संपूर्ण होते जाएंगे तो फरिश्तों के संस्कार बनते जाएंगे, जब वो दैवी गुणों के रूप में हमारे कर्मेंद्रियों में आ जाएंगे तो हम देवता बनते जाएंगे। तो जब ये स्थिति हमारी बार बार हम रिवाइज रियलाइज करते जाएंगे तो फिर हमारे मन में, तो ये स्थिति, तो हमारी जो मन के अंदर जो बाबा ने संकल्प, नेगेटिव संकल्प होते हैं, विकारों के संकल्प, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारों के संकल्प, जो हमें भी जलाते हैं दूसरों को भी जलाते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। व्यर्थ संकल्प कहां से आते हैं? आलस्य में व्यर्थ संकल्प आते हैं, अलबेलेपन से व्यर्थ संकल्प आते हैं, दूसरों में दोष निकालने की आदत से व्यर्थ संकल्प आते हैं, बदला लेने की भावना से व्यर्थ संकल्प आते हैं, चिंता भय से व्यर्थ संकल्प आते हैं, जल्दीबाजी करने से व्यर्थ संकल्प आते हैं, ईर्ष्या द्वेष से व्यर्थ संकल्प आते हैं, क्या क्यों कैसे कब, है ना, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इन 10 बातों से व्यर्थ संकल्प आते हैं। तो जब आत्मा में हमें इसको वैध संकल्प निकालने की आवश्यकता नहीं है। वैध संकल्प कैसे निकलेंगे? ऐसे नहीं, बाबा को दिल में बिठाओ, चलते फिरते उठते बैठते बाबा की एबीसीडी को रिवाइज करते रहो, मुरली को बार बार रिवाइज करते रहो। कम से कम 21 बार मुरली को रिवाइज करना चाहिए। कितनी बार साल में? कितनी बार करना चाहिए बोलो? कितनी बार? कितने जन्म का राजभाग्य चाहिए आपको? कितने जन्म का राजभाग्य चाहिए हमको? 21 जन्म का ना, तो कम से कम 21 बार तो करना चाहिए। चार बार पूरी मुरली पढ़ो और बार बार मुरली को फिर अपने जेब में रख लो, है ना? जेब में रखते हैं ना, ये क्या है बाबा का, ये बाबा का लव लेटर है ना। लव लेटर कहाँ रखते हैं? कहां पे रखते हैं बताओ? कहां पे रखना चाहिए? दिल के पास रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? और लव लेटर पढ़ते कैसे हैं? कैसे पढ़ते हैं? छुपा के पढ़ते हैं ना, छुपा के एक लाइन पढ़ते हैं ना, और पढ़ के फिर उसको मुस्कुराते हैं ना, और फिर छुपा के जेब में रख लेते हैं वापस, है ना, और फिर सोचते रहते हैं, फिर जैसे ही मौका मिलता है फिर क्या करते हैं? फिर निकाल के देखते हैं ये कहा, है ना, फिर छुपा देते हैं, है ना। तो ऐसे ही दिन में बार 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 कागज पे नोट कर लो भले मुरली, और जेब में रखो, है ना, और उसको बार 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 जितनी बार 21 बार क्या 50 बार पढ़ो, उसी को रिवाइज करते रहो, रियलाइज करते रहो। तो ऐसे करते के दिल सच्ची साफ हो जाएगी, विवेक ईश्वरीय हो जाएगा, चित्त हमारा बुद्धि दिव्य हो जाएगी, चित्त शांत और एकाग्र हो जाएगा, और स्मृति में एबीसीडी हो जाएगा, वृत्ति आत्मिक हो जाएगी, भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना हो जाएगी, संकल्प ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ शुद्ध और शक्तिशाली कल्याणकारी हो जाएंगे, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, मुख से मीठे बोल निकलेंगे, कानों में सिर्फ बाबा की मुरली जाएगी, खराब बातें जाएंगी नहीं, और फिर आपका ऑरा, आपके आसपास जो वायुमंडल है ना वो बड़ा होता जाएगा। वायु ऑरा माना ये सातों एनर्जी, जब बाबा को आप याद करते हैं तो सात, आज जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है तो आपका आभा मंडल बड़ा होता जाता है। 15 पे आपका ऑरा स्किन के लेवल पे होता है, 8 पे 6 इंच का होता है, 6 इंच लगभग इतना बड़ा यहां से, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 6 हो जाती है तो लगभग 4 फुट का ऑरा हो जाता है, मतलब 4 फुट तक वायुमंडल बन जाता है शांति पे और खुशी का, और जब 4 हो जाता है तो 64 फुट का हो जाता है। 64 फुट तक आपके वहां तक, मतलब दूर तक शांति प्यार खुशी का वायु, आपके पूरे घर में, अगर आपका घर 40 फुट का है तो सारे घर में शांति प्यार खुशी के वायुमंडल बन जाएगा। आपका पूरा घर, आपका ऑफिस जहां काम करते हैं, दुकान ऑफिस हॉस्पिटल, वो सारा शांति प्यार खुशी के वायुमंडल में भर जाएगा, और उसमें आने वाला हर व्यक्ति अपने आप ही शांति महसूस करेगा, प्यार खुशी महसूस करेगा। तो ये है निर्विघ्न बनने की स्थिति। तो जितना आप यथार्थ याद में टिकते जाएंगे, और अमृत वेला बाबा का जो मुरली का सुबह सुबह का समय है, जब सारा दिन हम इस स्थिति में रहते हैं एबीसीडी, उस मुरली को अपना साथी बना लेते हैं, मुरली को ये बाबा का पत्र है जो लव लेटर को हो, प्रेम पत्र को हो, इसको अपना जीवन का साथी बना लेते हैं स्थूल रूप में, और फिर सूक्ष्म रूप में इस पे चलते हैं, तो हमारे अंदर वो स्थिति आ जाती है कि अमृत वेला जो सबसे अच्छा समय है, उठते ही हमारे 4 संकल्प ही होते हैं और तुरंत हम 2 संकल्प पे पहुंच जाते हैं, जब संकल्प किया तुरंत बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं, क्योंकि रात को नींद अच्छी आती है, संकल्प कम चलते हैं सारा दिन, तो रात को नींद थोड़ी, नींद में हम फ्रेश हो जाते हैं, सपने नहीं आते, सबकॉन्शियस माइंड है ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे खत्म हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड शांत और एकाग्र रहता है, उसमें आनंद आ जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, तो सच्चित आनंद स्थिति वापस आने लगती है, सच्चित आनंद स्वरूप स्थिति आने लगती है, और हमारे अंदर वो स्थिति से मन एकाग्र रहने लगता है, मतलब स्मृति मन मना भव मना, स्मृति में स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प चारों में बाबा समा जाता है। मनमना भाव का अर्थ क्या है? स्मृति में वृत्ति में भावना में संकल्प में बाबा समा जाए, मन के 4 एस्पेक्ट है ना, चारों में बाबा 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 मय हो जाता है वो मनमना भाव। तो वो जब स्थिति बन जाती है तो हमारा बैठते ही योग लग जाता है, और एकदम हम परम धाम में एक ही संकल्प बाबा, बस बाबा, बाबा शब्द से चाबी है सब खजानों की, एकदम परम धाम में चले जाते हैं और हमारे विक्रम विनाश होने लगते हैं। चिंता का जो चिंता में 20 संकल्प चलते हैं, डर में 25 संकल्प, चिड़चिड़ेपन में 30 संकल्प, गुस्से में 35 संकल्प, 40 में बहुत जोर से गुस्सा आता है और 45 में पागल। तो विकार हमें पागलपन की तरफ ले जाते हैं। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी के संकल्प होते हैं वो डिलीट होने लगते हैं। जब हम ऊपर परमधाम में जाते हैं ना, तो ये काम विकार के संकल्प, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के संकल्प, वो जो मेमोरीज है ना, स्मृतियां, वो डिलीट होने लगती है। इसी को कहते हैं विक्रम विनाश। तो जितना हम अमृत वेला पावरफुल करते जाते हैं, उतना हमारे विक्रम विनाश होते जाते हैं और विघ्न अपने आप ही समाप्त होते जाते हैं। जिस व्यक्ति को देखे हमें गुस्सा आता है, जिस व्यक्ति को देखे हमारी वृत्ति खराब होती है, जिस व्यक्ति को देखे लगाव, झुकाव, टकराव की फीलिंग आती है, प्रभाव की फीलिंग आती है, वो खत्म होता जाता है। यही हमारे विघ्न है। तो हमारे संकल्प, व्यर्थ संकल्प चलने ही बंद हो जाते, व्यर्थ संकल्प मुक्त हो जाते, ऑटोमेटिक हमारे संकल्प स्लो हो जाते हैं। फिर हम एक एक संकल्प पे अटेंशन रख सकते हैं। अटेंशन, अटेंशन माना नो टेंशन, अटेंशन है ना। अटेंशन क्या रहता है? इस बात का अटेंशन रहता है ABCD का, मैं कौन हूं, मेरा कौन है, मेरा उससे सर्व संबंध है, D4 ड्रामा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। ये अटेंशन देने लगता है हर समय, चलते फिरते उठते बैठते। तो सच्चे ब्राह्मण की निशानी क्या है? चार नियम, चार मर्यादाएं। सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे और पावरफुल अमृत वेला हो, मतलब बैठे और समाए, बीज रूप स्थिति होनी चाहिए। बीज रूप माना परम धाम की स्थिति, उसमें चलेंगे बस, वहां हमारे विक्रम नाश होते रहते हैं। और ऑटोमेटिक जितनी देर हम परम धाम में रहते हैं, उतनी देर हमारी मनसा सेवा होती रहती है, क्योंकि हम लगभग एक की स्थिति पर होते हैं ना। एक स्थिति में पूरे विश्व में हमारे वाइब्रेशन जाते रहते हैं, शांति, प्यार, खुशी के। यही मनसा सेवा है। जब हमारा मन 100% शुद्ध है, शुद्ध पवित्र है, पावन तत्व प्रधान स्थिति हमारी, उसमें जब हम होते हैं तो ऑटोमेटिक सारे विश्व में सकाश जाता रहता है। तो ये बीज रूप स्थिति का वायु अमृत वेला होना चाहिए। मुरली, फिर दूसरी बात मुरली, मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, बाबा की गोद में बैठ के, जब बाबा की मुरली सुनते हैं, क्लास में आके बैठ के मुरली सुनो और 8 बजे चुप रहो, बिल्कुल मत बोलो। जब हम 7 जब सुबह अमृत वेला पावरफुल करते हैं, तो हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, इसमें 18 हार्मोन निकलते हैं, इससे सुबह सुबह हार्मनी में निकल जाते हैं, बैलेंस में निकलते हैं। उससे आपके तन में जो भी बीमारी हो, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, एसिडिटी, दमा, जो भी बीमारी हो, अगले 24 घंटे में कम हो जाती है। अगर 4 से 5 आप उसमें सो जाते हो, आलस में रहते हो, बेलेपन में रहते हो, तो आपकी वो हार्मोन जो है वो बैलेंस में नहीं निकलते हैं और हर बीमारी बढ़ जाती है शाम होते होते। इसलिए अमृत वेला हर ब्राह्मण को करना अति आवश्यक है। और पावरफुल अमृत वेला, खाली बैठे उठ के बैठ गए और झटके झटके नहीं खाने हैं, कभी इधर के कभी इधर के, ऐसे नहीं। या सो नहीं जाना है, जागृत अवस्था में है ना। ये इस ABCD को रिवाइज करते हुए, बाबा की मुरली ने, बाबा ने क्या कहा था, सारा दिन उसको अभ्यास करो, किया है तो बैठते योग लगेगा, उस समय अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं होगी, तो विक्रम विनाश होंगे। विक्रम विनाश होने की निशानी क्या है? उस दिन वो व्यक्ति सामने आएगा जिससे कल झगड़ा हुआ था, जिसने कल मुझे उल्टा सीधा कहा था, किंतु आज उसको देख करके आपके मन में गलत संकल्प नहीं आएगा, आपको याद ही नहीं आएगा इसने कुछ गलत मुझको कहा था। ये निशानी के मैंने विक्रम विनाश हो गया उसके साथ मेरा। आपको कोई कुछ कहेगा, आपकी गिलानी करेगा, आपका मन चलेगा ही नहीं, वो भले कुछ मर्जी बोलता रहे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपके कोई गिलानी कर रहा है, आपको कोई बुरा कह रहा है, आपके मन में सत्यता का बल है ना, योग का बल है, तो आपको फील ही नहीं होगा कुछ भी, भले कुछ मर्जी बोलता रहे, कुछ भी होता रहे, वातावरण में कुछ भी होता रहे, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। बाबा ने कहा ना, वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है, बल्कि मेरा वातावरण बनेगा उससे आसपास के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ेगा, शांति, प्यार, खुशी का प्रभाव पड़ेगा, वायुमंडल बन जाएगा, सहनशीलता आ जाएगी, दृढ़ता आ जाएगी, मधुरता आ जाएगी, धैर्यता आ जाएगी, गंभीरता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी, उदारता, बड़ी दिल बन जाएगी, किसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, चिंताएं खत्म हो जाएंगी। तो ऐसी स्थिति, तो अमृत वेला करना बहुत जरूरी। मुरली बाबा की गोद में बैठ के सुनो, सूक्ष्मतम में चले जाओ और बाबा की गोद में बैठ के मुरली सुनो, सूक्ष्मतम में बैठे यहां हो, किंतु बाबा जैसे मुझे ही मुरली सुना रहे हैं। फिर कर्मयोगी बन के साधन कर्म करो, तो अमृत वेला, मुरली, सारा दिन कर्मयोगी बन के कर्म करना। सोने के पहले पोता मेल दो बाबा को, बाबा सुबह से लेटर लिखो बाबा को, बाबा आज सारा दिन में ये हुआ, मुझसे ये गलती हो गई, यहां पर गलती हुई, मैंने आज ये गलत हो गया, उसने मुझे कहा, मुझे फील हो गया। अच्छी बात भी लिखो, बुरी बात भी, लेटर लिखो बाबा को, साइन करो, बाबा को 000 पे फैक्स कर दो। बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर क्या है? 000। मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, अभी तक अस्तार में जो बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, सब 0। तो बाबा के पास लेटर चला गया, फिर फाड़ के उसको डस्टबिन में डाल दो और फिर बाबा को याद करके बाबा की गोद में सो जाओ। सोना कहां होता है हमको? कहां सोना होता है? हमारा जो बेड है ना, बेड तो हमारी गैरेज है। गैरेज समझते हैं? गैरेज में कार को रखते हैं। ये शरीर हमारी कार है ना, इस कार को गैरेज में पार्क करो। हमारा बेडरूम है सूक्ष्म वतन और हमारा बेड है बाबा की गोद। तो बाबा की गोद में जाके सो जाओ। बाबा को कैसे, बाबा को कैसे सोचा? बाबा 3:30 उठा देना, कोई कोई अलार्म की आवश्यकता नहीं है। बाबा एक्यूरेट आपको 3:30 से पहले उठा देगा, 3:29 पे उठा देगा। उठो, मुंह धो, ब्रश करो और फिर योग में बैठ जाओ। इस तरह से अपना अमृत वेला, मुरली, सारा दिन कर्मयोगी। कर्मयोगी माने कर्म करते करते बाबा से योग लगा रहे और फिर ये वाली स्थिति। और पोता मेल कभी भी लेटर और चार्ट भरे बगैर बाबा सो मत, कभी मत सो। फिर सपने आएंगे, डरावने सपने आएंगे, खराब सपने आएंगे, ये पक्का करो। मैंने अभ्यास किया इस बात का, मैं कभी भी लेटर और चार्ट के बगैर सोता नहीं हूं, कभी भी, कितना भी देर हो जाए। आके लिखूंगा जरूर, कितना भी बिजी हो क्या, जब पेशेंट से मुझे रात को 11 बजे भी हॉस्पिटल से आना पड़े। और इतनी अच्छी नींद आती है उसके बाद, 3:30 अपने आप आंख खुल जाती है, फ्रेश होकर उठते हैं एकदम, कोई सुस्ती का आलस का मतलब नहीं है। तो ये जो पक्का चार, और चार मर्यादाएं, पवित्रता, पवित्रता के लिए बहुत गहराई की आवश्यकता। जितने % पवित्रता उतना % मेरा बाबा से कनेक्शन है। बाबा एवर प्योर है ना, 100% प्योर है, एवर प्योर है। तो मेरा जितनी पवित्रता, ब्रह्मचर्य खाली बात नहीं है, ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी भी, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सोपन तक भी पवित्रता होनी चाहिए। इतनी गहराई से पवित्रता हो, किसी की देह को देखने का मतलब ही नहीं, बस सबको ज्योति बिंदु आत्मा देखना। ब्रह्मचारी जो बाबा ने किया वैसा ही मुझे करना है। वैसे संकल्प आना भी अपवित्रता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रही है, ऐसा क्यों होता है, ये भी ड्रामा में है ना, ड्रामा बना बनाया, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कैसे रेज करूं, ये भी अपवित्रता है। तो जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी उतना हमारा बाबा से कनेक्शन बढ़ता जाएगा, चलते फिरते बाबा हमसे कंबाइंड हो जाएगा, बाबा के साथ का अनुभव होता जाएगा। जब बाबा साथ आएगा तो विघ्न कहां से आएंगे? जहां बाबा है वहां विघ्न आई नहीं, कोई भी विघ्न आएगा ही नहीं। और फिर दूसरा शुदन, बाबा की याद में भोजन बनाना, बाबा की याद में खाना। सबसे बड़ा जो हमारी माताओं को होता है ना, घरों में बहू के हाथ का खाएंगे, इसके हाथ का खाएंगे, नहीं, बाजार का खाएंगे, नहीं, कभी नहीं खाओ। शादी ब्याह में किसी के यहां जरा टच भी नहीं करो। अब बाबा के बने हमें लोक लाज नहीं निभानी है, हमें बाबा की लाज, इस कुल की, ब्राह्मण कुल की लाज निभाओ। जितना करेंगे उतना पाएंगे, जो करेगा वो पाएगा और जितना करेगा उतना पाएंगे, ये पक्का करने की आवश्यकता है। नहीं तो शुद्ध अन्न, बाबा की याद, क्योंकि एक बार खा लिया ना उसका असर ना हो ही नहीं सकता है, ये पक्का करो। हमने किया पक्का इस बात को। शुद्ध अन्न, सत्संग, एक बाबा और मुरली का संग, तीसरा कुछ संग नहीं, एक बाबा एक मुरली, इसके अलावा कोई, बाबा की मुरली सब कुछ है, सब कुछ है बाबा की मुरली में, चारों सब्जेक्ट हैं बाबा की मुरली में। तो उसको पक्का करो, बाकी इधर की किताब पढ़ूं, उधर की किताब भी पढ़ूं, वो मैगजीन में बहुत अच्छा आर्टिकल है, वो नहीं, एबीसीडी कहते हैं ना, एबीसीडी, आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, ई और एफ नहीं, ई माना एक्स्ट्रा, जो बाबा ने नहीं किया वो मैं क्यों करूं, ब्रह्मा बाबा ने जो किया मुझे वही करना, नया कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। ये थोड़ा सा प्राणायाम कर लूं, थोड़ा सा लंबे लंबे भास्त्रिका ले लूं, थोड़ा लंबे लंबे सांस ले लूं, थोड़ी मुद्रा लगा के बैठ जाऊं, है ना, ये सब करने की आवश्यकता नहीं। हठयोग नहीं करना, बाबा ने कहा राजयोगी कभी हठयोग नहीं करते हैं, हठयोगी कभी राजयोग नहीं कर सकते हैं। हठयोग से तो और गुस्सा बढ़ता है, एंगर बढ़ता है, तो वो करने की हमको आवश्यकता नहीं है, उल्टा हमारा विक्रम बनता है। और एफ फोर्स, किसी को जबरदस्ती बदलने की कोशिश मत करो, स्पेशली अपने बच्चों को, अपने घर वालों को कभी जबरदस्ती मत बदलो। उनको बोल के नहीं सिखाओ, कर्मों से सिखाओ, कर्मों से बदलेंगे वो, आपके बोलने से नहीं बदलेंगे। और चौथा प्रेस दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा, सत्यता, निर्भयता, मधुरता, सरलता, नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता, गंभीरता, दृढ़ता, संतुष्ट रहना, हर्षित मुख रहना, ये करो। गुस्सा एक बार क्या तीन दिन तक योग लगेगा? नहीं। एक बार मूड ऑफ किया पांच दिन तक वैसा योग नहीं लगेगा। एक बार जल्दीबाजी के 18 घंटा योग नहीं लगेगा। बाबा ने कहा गुस्सा करने के बाद 6 महीने तक दूसरे को याद रहता है ये गुस्सा, एक क्रोधी है, आपकी इज्जत खत्म हो जाती है, काम विकार में गए तो खत्म है ना। तो ये सब बातों का गहराई समझने की आवश्यकता है, ठीक है। तो दैवी गुणों की ये चार परहेज हैं, चार मर्यादा की लकीर है। इस लकीर के अंदर रहेंगे ना तो सीता राम के पास रहेगी, नहीं तो क्या क्या हो जाएगा, रावण उठा के ले जाएगा। रावण कैसे आता है? साधु के वेश में। कभी रावण के वेश में नहीं आता है, साधु के वेश में आता है। देखो थोड़ा थोड़ा कर लो ना, अब मैं भी तो तुम्हारी बच्ची हूं ना, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं ना, थोड़ा तो मैं इतना थोड़ी ना खराब, मैं तो कुमार हूं ना, ले लो ना मेरे हाथ से बना, कोई बात नहीं। अच्छा मैंने बाबा की, मैंने भगवान की याद में बनाया, थोड़ा खा लो। फिर रावण उठा के ले जाए। लास्ट में एक दो बात मैं सिर्फ कहना चाहूंगा। विघ्न विनाशक कहते हैं ना गणेश को, कहते हैं ना गणेश को, ऐसे में सोच रहा था गणेश को विघ्न विनाशक कहते, निर्विघ्न कहते ना, तो विघ्न कैसे उसको दिखाया? गणेश का सिर कैसे दिखाते हैं? बड़ा सिर। हाथी का सिर दिखाते हैं ना, आंखें छोटी दिखाते हैं, कान ढके हुए दिखाते हैं, मुंह भी ढका हुआ, सूंड से ऊपर सूंड होती है, नाक बड़ी होती है, मुंह ढका हुआ। तो हमें भी हाथी के सिर गणेश के माफिक बड़ा सिर बेयर की सोच रखनी है, छोटी सोच नहीं। देह की सोच छोटी है, मैं आत्मा हूं, एबीसीडी की सोच रखें, बाबा ने क्या कहा उसकी सोच रखें, वो सोचें, वो चिंतन में लाएं, वो मनन चिंतन मंथन करें। आंखें छोटी, जो देखना है वही देखें, सिर्फ फालतू देखने की आवश्यकता नहीं, यहां भी देखूं वहां भी देखूं, ये क्या हो रहा है वो क्या, ऐसे देखने की आवश्यकता नहीं। जो बाबा ने कहा वही देखूं, छोटी आंखें, कान ढके हुए, जो बाबा ने कहा वो सुनूं बस, और कुछ फालतू ना सुनूं, यहां का भी सुनूं वहां का भी सुनूं, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है क्या? आवश्यकता नहीं, ठीक है। और मुख सूंड से ढका हुआ, ये नाक बड़ी, माना परखने की शक्ति पैदा करो बड़ी, हर चीज को परख के तब खाओ। मुंह में कैसे नहीं, जो चाय डाल लिया, आसक्ति में खाना भी पाप है। आज खाना बहुत अच्छा बनाया, एक चपाती ज्यादा खा ले, आज ये बहुत अच्छा एक्स्ट्रा खा ले, नहीं, दो चपाती सुबह, दो दोपहर, दो शाम, एक टाइम दाल खा लो और सब्जी खा लो, आराम से चबा चबा के बाबा की याद में खा लो, 8 गिलास 10 गिलास पानी पी लो, बहुत है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ना, जो हार्ट के पेशेंट्स को हम यूज करते हैं, 4 से 5 आधा घंटा 45 मिनट बाबा की परमधाम में चले जाओ, आनंद की स्थिति में चले जाओ, परमधाम की स्थिति में जाके सर्वशक्तिमान की स्थिति में विक्रम विनाश करो, सातों एनर्जी भर जाएंगी, आठवें सातों एनर्जी भरेंगे, 18 हार्मोन निकलाएंगे, और फिर इससे विक्रम विनाश होंगे, और फिर 8 बजे तक चुप रहो, बाबा की मुरली को, पिछले दिन की मुरली को बार बार रिवाइज करते रहो, 7 से 8 बाबा की मुरली क्लास में जाके सुन लो। तो उससे क्या होगा, हमारा जो हार्मोन है ना, ये एनर्जी बॉडी के हर अंग में चले जाएगी, टीम पॉजिटिव, मुरली माना टीम, 100% पॉजिटिव टीम, मन पॉजिटिव हो जाएगा, एनर्जी सातों एनर्जी ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुखानंद शक्तियां शरीर के हर सेल में चली जाएंगी। एड्रिनल हार्मोन जो होता है ना कॉर्टिसोल, 8 बजे निकलता है, वो बैलेंस में निकलेगा। फिर एनर्जी शरीर के बाहर कैसे निकलेगी, जब शुद्ध सात्विक सैर, बाबा की याद में 45 मिनट सुबह सैर कर लो, बाबा की याद में, बातें करते हुए नहीं, बाबा की याद में सैर करो, फास्ट 110 स्टेप पर मिनट के हिसाब से लगो, तेज शांत में बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में सैर कर लो बाबा के पास। फिर शुद्ध सात्विक भोजन, ऐसा भोजन बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, फल सब्जी रोटी है ना, दाल दूध ये लो, बस चबा चबा के खाओ, और फिर शुद्ध सात्विक भोजन और शुद्ध सात्विक नींद, सोने के पहले लेटर लिख के पहले मन को शुद्ध करो, फिर सातों गुणों का अभ्यास करते करते बाबा की गोद में सो जाओ। तो ये शुद्ध सात्विक भोजन। और अगर कोई बीमारी आ गई है, बीमारी ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, कोई बीमारी भी है, तो बाबा की याद में रो के दवाई नहीं खाओ, बाबा की याद में उसको भी फ्रूट समझ के दवाई खाओ, ड्राई फ्रूट समझ के दवाई खाते हैं ना, कई लोग रो के दवाई खाते हैं, उल्टा नुकसान करती है, तो बाबा की याद में रहे। तो वो एनर्जी जो है ना हमारी, ये एनर्जी जो अंदर सारे रोमों में फैल गई है, शरीर के बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और चारों तरफ फैल जाती है, वही आभा मंडल का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमारी आत्मा, मन और तन तीनों निर्विघ्न बन जाते हैं। दिल में, आत्मा में, आत्मा के दिल में दिलाराम समा जाता है, मन मनमना भाव हो जाता है, मन में मुरली समा जाती है, और शरीर में सात्विक एनर्जी भोजन के द्वारा, सैर के द्वारा और नींद के द्वारा फ्रेश हो, जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, और जो पुराने कर्म भोग हैं डॉक्टर के साथ, फार्मेसी वालों के साथ, वो हमारे थोड़ी दवाई खा के चुप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो इस यथार्थ याद के द्वारा क्या होगा, क्या होगा, हमारी निर्विघ्न अवस्था बनेगी, और निर्विघ्न अवस्था के साथ जो हमारा वायुमंडल बनेगा आसपास, उसमें हमारे घर के संबंधी, ऑफिस में काम करने वाले, ऑफिस में कहीं भी हमारे जो साथी हैं, वो भी निर्विघ्न बनते जाएंगे। ओम शांति। Thank you.
ये तीन